हमारी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्यवचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्यवचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आज हम नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। ये नए नियम की चौथी पुस्तक है और सुसमाचारों में भी इसका चौथा स्थान है। सामान्यतः पाठकों का विचार है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझना सरल बात है, अर्थात ये कठिन पुस्तक नहीं है। आप बहुधा इस सामान्य युक्ति को सुनते हैं कि यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार एक सरल सुसमाचार है, परंतु इसकी भाषा की सरलता ने अनेक पाठकों को छला है। ये एक अक्षरीय तथा द्विअक्षरीय शब्दों में लिखी गई पुस्तक है। उदाहरण के रूप में मैं आपको अनेक पदों से परिचित कराता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 11 और 12 पदों को आप देखें, जहां इस प्रकार से लिखा है, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मित्रों, हमें शब्दों से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम यहां अत्यंत गूढ़ सुसमाचार पुस्तक के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में इसी अभिव्यक्ति को ले लीजिए, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 20वें पद में पाई जाती है, जहां लिखा है, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। मित्रों, यदि इन शब्दों की गिनती करें तो ये संख्या में मात्र 9 शब्द हैं। यदि आप किसी चौथी कक्षा के छात्र से भी इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ पूछें, तो वह न केवल इनका अर्थ बताएगा वरन इनकी परिभाषा भी बता देगा। परंतु जब हम इस वाक्य को संयुक्त रूप से रखते हैं कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में, तब बड़े बड़े गूढ़ धर्म विज्ञानी, महान दार्शनिक भी इन शब्दों के अर्थ की गहराई को समझने में असमर्थ रहते हैं। मित्रों, तुम मुझ में हो इसका अर्थ है उद्धार, अर्थात मोक्ष, और मैं तुम में हूं इसका अर्थ है शुद्धिकरण। क्या आपने इसको इस प्रकार से समझा है? यदि नहीं तो आज समय है, आप इसे समझ सकते हैं। तुम मुझ में हो इसका अर्थ है हमारा उद्धार, अर्थात मोक्ष, और मैं तुम में हूं इसका अर्थ है हमारा शुद्धिकरण। बहुधा हम सोचते हैं कि जो कुछ कहा गया है हम इसका अर्थ समझते हैं, किंतु हम उसके अर्थ की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। ये शब्द अत्यंत सरल है, परंतु इनका अर्थ गहरा है। बाइबल विद्वान जेरोम यूहन्ना के सुसमाचार के विषय में कहता है कि दिव्य रहस्यों की गहराई में यूहन्ना ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। आचार्य ए.टी. पियर्सन इसे इस प्रकार कहते हैं कि कि ये मसीह के हृदय को स्पर्श करता है। ये सभी कथन यूहन्ना के सुसमाचार की गंभीरता व गहराई को प्रकट करते हैं। यद्यपि ये धारणा है कि यूहन्ना का सुसमाचार सरल है, परंतु ऐसा सदैव नहीं माना गया कि इस सुसमाचार के लेखक प्रेरित यूहन्ना ही हैं। अनेक सेमिनरी अध्यापक भी निश्चित रूप से ये कहने में संकोच करते हैं कि इस सुसमाचार के लेखक प्रेरित यूहन्ना ही हैं। जर्मनी के एक बाइबल विद्वान ने वेटिकन पुस्तकालय में अध्ययन करते समय एक प्राचीन हस्तलेख में ये लिखा हुआ पाया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के लेखक प्रेरित यूहन्ना हैं। एलेक्जेंड्रिया निवासी श्रीमान क्लेमेंट, जो 200 ईस्वी के मध्य रहे, उन्होंने कहा कि यूहन्ना अपने मित्रों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाकर उसने यह आत्मिक सुसमाचार लिखा। और मित्रों, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यूहन्ना का सुसमाचार ही वह आत्मिक सुसमाचार है जिसके विषय में श्रीमान क्लेमेंट ने 200 ईस्वी में चर्चा की थी। जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूहन्ना ये सुसमाचार क्यों लिखता है? यूहन्ना ने ये सुसमाचार क्यों लिखा? मित्रों, 100 ईस्वी के आसपास सभी प्रेरितों की मृत्यु हो चुकी थी। सुसमाचार व नए नियम के लेखक सभी समाप्त हो चुके थे। मात्र प्रेरित यूहन्ना ही उस समय जीवित थे। अपने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास में सर्वप्रथम हम सिद्धांतों में मतभेद पर विचार करेंगे। कुछ लोगों का विचार है कि अपने समय के गूढ़ ज्ञानवादियों की विचारधारा का खंडन करने के लिए यूहन्ना ने इस सुसमाचार को लिखा। दूसरे लोगों का कहना है कि यह किसी भी रूप से खंडनात्मक सुसमाचार नहीं है और यूहन्ना ने कदाचित इसे इस विषय का खंडन करने के लिए नहीं लिखा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कुछ अन्य सुसमाचार लेखकों ने लिखा है, यह उसका पूरक है। अर्थात यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में केवल कुछ बातें जोड़ दी हैं। परंतु श्रीमान हेस, HASE हेस कहते हैं, ये सुसमाचार केवल रिक्त स्थानों को भरने के लिए पैबंद लगाने का कार्य नहीं है। अब आपने देखा कि यह सिद्धांत हमें संतोषजनक उत्तर नहीं देते, और इसलिए आचार्य जॉन वर्नन मैगी कहते हैं कि मेरे फैसले के अनुसार जो एकमात्र संतोषजनक व्याख्या है वो ये है कि यूहन्ना ने कलीसिया के निवेदन पर यीशु समाचार लिखा जिसके पास पहले से ही मत्ती, मरकुस तथा लूका द्वारा रचित सुसमाचार थे, और वे चाहते थे कि उनके आत्मिक विकास के लिए कुछ इससे भी अधिक आत्मिक तथा गहरी सामग्री हो। यही वो बात है जो प्रारंभिक कलीसिया के संत अगस्तीन ने कही। चारों सुसमाचारों में, वरन चारों सुसमाचारों की एक पुस्तक में, प्रेरित यूहन्ना बड़ी आत्मिक समझ के साथ उकाब के समान ऊंचा उठता हुआ तथा 3 सुसमाचारों से अधिक प्रौढ़ता से उसकी घोषणा करने तथा उसे ऊंचा उठाने में ये इच्छा करता है कि हम भी ऊंचे उठाए जाएं। मित्रों, यूहन्ना के सुसमाचार का यही उद्देश्य है। यही कारण है कि उसने इसे लिखा, और इसलिए इसके अनुसार जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पर आते हैं तो वह हमको बैतलहम ग्राम में नहीं ले जाता। हम अनेक कृष्ण जयंती पर ये गीत गाया करते हैं कि बैतलहम के अए छोटे कस्बे, तुझे खामोशी में सोते देखा। कभी भी आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते जब तक हम इस प्रकार के गीतों को गाते रहेंगे। तब तक हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। हमें इससे आगे प्रभु के विषय में सोचना है, उसे देखना है, हमें बैतलहम से आगे निकलना है। यूहन्ना हमें बैतलहम ग्राम इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि वह हमें एक मसीह के विश्वासी के रूप में बढ़ाना चाहता है, हमारी आत्मिक उन्नति करना चाहता है। योना में एक विशाल रिक्त स्थान से होकर अमरता के शांत गलियारे में होता हुआ एक आदि की ओर ले जाता है जो कि वास्तव में आदि नहीं है। जैसे आदि में वचन था, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार करोड़ों वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुका है। जब इस प्रकार का कथन हम सुनते हैं, अर्थात जब आप ये पढ़ने या सुनने जाते हैं या आपको इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं कि आदि में, तो आप अमरता में जितना पीछे जा सकते हैं चले जाइए और अपनी उंगली टिका दीजिए। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह उस अमरता में से आपसे वहां भेंट करेंगे। योहन्ना रचित सुसमाचार का प्रथम अध्याय उसका प्रथम पद में योहन्ना कहते हैं, आदि में वचन था। ध्यान दें, वचन है नहीं बल्कि वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसके पश्चात अपनी उंगली उठाकर और करोड़ों वर्ष पीछे ले जाइए। वहां यूहन्ना प्रथम अध्याय के तीसरे पद में यूहन्ना कहते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया और जो कुछ रचा गया उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और चौथवें पद में यूहन्ना एक कदम और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में निवास किया। मित्रों, ये कथन पढ़कर यूनानी दार्शनिक तथा यूनानी सोच रखने वाले लोग जिनके लिए लूका ने सुसमाचार लिखा यहीं रुक जाएंगे, वे आगे नहीं बढ़ेंगे और कहेंगे कि हम तो तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं और हम तुम्हारा अनुसरण नहीं कर सकते। परंतु प्रेरित यूहन्ना यूनानियों को नहीं लिख रहे हैं और वह इसके आगे भी लिखते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वां पद। यहां महत्वपूर्ण बात है, उसे प्रकट किया। इससे तात्पर्य है उसने परमेश्वर की व्याख्या की। मित्रों, परमेश्वर इकलौता परमेश्वर को खुले स्थान में बाहर लेकर आया जहां मनुष्य उसे देख सके और उसे जान सके। और वह मनुष्य जिसकी कोई उद्भव अर्थात उत्पत्ति नहीं है, वह पुत्र है जो अमरता में से आता है। मित्रों, लूका जो व्यवसाय तथा सोच विचार से वैद्य था, इस व्यक्ति को जो अमरता में से इस पृथ्वी ग्रह पर आया, सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से देखता है, वह इसे एक सिद्ध मानव के रूप में देखता है। यद्यपि यूहन्ना का ढंग लूका से भिन्न है, परंतु वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जिस पर लूका पहुंचा था। आप यूहन्ना के ढंग को वैज्ञानिक ढंग कभी नहीं मानेंगे, आप इसे वैज्ञानिक नहीं कहेंगे। एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखता है, बार बार उसके कुंवारी से जन्म के विषय में चर्चा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह पहले ही से इस पर विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक कुंवारी से हुआ जिसका नाम मरियम था। इसलिए जब वह यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार पर आता है, तो वह इसके पढ़ने तथा अध्ययन करने में विशुद्ध हर्ष तथा ऐसे आनंद का अनुभव करता है जो वर्णन से बाहर है। मित्रों, क्या यूहन्ना का सुसमाचार वास्तव में सरल सुसमाचार है? वास्तव में यह सरल नहीं है, यह गूढ़ अर्थात गहरा है। यह एक परिपक्व विश्वासी के लिए है। एक मुस्लिम पृष्ठभूमि से आए मसीह के विश्वासी जन से भेंट के समय उन्होंने मुझसे कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझना कठिन है, विशेषकर प्रथम अध्याय का प्रथम पद। वास्तव में यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल नहीं है, इसका प्रथम पद अत्यंत गूढ़ है। यहां लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मित्रों, ये वास्तव में गूढ़ कथन है। वास्तव में यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल नहीं है, ये परिपक्व विश्वासी के लिए है। फिर भी ये अन्य तीन सुसमाचारों से अधिक उपयोग में लाया जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उनके लिए है जो पहले ही से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। जब इसे पढ़ते पढ़ते 13वें अध्याय तक आप पहुंचते हैं, तत्पश्चात 17वें अध्याय को आप पढ़ते हैं, तो आप स्वयं ही अपनी नोटबुक में लिख देंगे कि ये सुसमाचार केवल विश्वासी जन के लिए है। मैं नहीं सोचता कि 13 से 17 अध्याय का खंड किसी अविश्वासी के लिए कोई अर्थ रखता हो। 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उन्हें जो उनके अपने थे उपरौली कोठरी में ले जाते हैं और उन्हें वे बातें बताते हैं जो उनके आत्मिक विकास में सहायक होंगे। अन्य किसी भी सुसमाचार लेखक ने इन बातों की चर्चा नहीं की है। क्यों? क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को संसार के सामने एक मोक्षदाता, एक उद्धारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु क्या यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया? हां, यूहन्ना ने भी वही कार्य किया है जो अन्य तीन सुसमाचार लेखकों ने किया है। यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह को एक मोक्षदाता के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु उसका प्राथमिक उद्देश्य मसीह के विश्वासी जन की आत्मिक उन्नति व विकास है। मित्रों, यूहन्ना पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह के विषय में अन्य सुसमाचार प्रचारकों से अधिक जानकारी प्रदान करता है। वरन यूं कहना चाहिए कि जिसकी जितनी जानकारी अन्य तीन सुसमाचार प्रचारक मिलकर प्रदान करते हैं, यूहन्ना उससे कहीं अधिक जानकारी अकेला ही प्रदान करता है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि अब हम पुनरुत्थानित मसीह को जानते हैं, इसलिए प्रेरित यूहन्ना मसीह यीशु के मृतकों में से जीवित होने के पश्चात अपने प्रियों पर प्रकट होने पर विशेष बल देता है। वह ऐसी 7 घटनाओं का वर्णन करता है जब उनके चेलों ने उन्हें पुनरुत्थान के पश्चात जीवित देखा। यूहन्ना उनके पुनरुत्थान से संबंधित विषय के लिए 2 अध्यायों का प्रयोग करता है। मित्रों, उन 7 घटनाओं में से पहली घटना है प्रभु यीशु मसीह का गतसमने की वाटिका में मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट होना। दूसरी बार वे अपने चेलों पर प्रकट हुए जबकि उपरौली कोठरी में दुबके हुए वे बैठे हुए थे और थोमा उनके बीच में नहीं था। तीसरी बार वह पुनः उपरौली कोठरी में प्रकट हुए जब थोमा भी वहां उपस्थित था। इन तीनों घटनाओं का लेखा 20वें अध्याय में है और तब हम देखते हैं कि वह गलील सागर अर्थात तिब्रियास की झील पर अपने 7 चेलों पर प्रकट होते हैं और उनसे खाने को मछली मांगते हैं, जैसा कि यूहन्ना 21वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है। मित्रों, वह आपसे भी एक दिन कहेंगे, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वो मुझसे भी कहेंगे, हे प्रचारक, क्या तुमने अभी हाल में कुछ मछलियां पकड़ी हैं? मित्रों, हम उसी ढंग से मछली पकड़ने में सफल हो सकते हैं जैसा कि वो हमसे कहते हैं। हम अपने ढंग से मछलियां नहीं पकड़ सकते, हम अपने ढंग से प्रभु का कार्य नहीं कर सकते। आपको प्रभु के निर्देशों के अनुसार ही मछली पकड़ना है और उसके पश्चात वह उनके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। काश मैं भी वहां होता उनके साथ नाश्ते के समय। मित्रों, प्रभु जी आज भी मुझे और आपको भोर का नाश्ता कराना चाहते हैं, वरन दिन भर और संध्या समय तक। आपको आत्मिक भोजन से तृप्त करना चाहते हैं। उसके पश्चात वह शमौन पत्रस के समान आपसे प्रश्न करते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 15 से 17 पदों में बताया गया है। प्रभु जी पत्रस से ऐसा नहीं कहते कि हे शमौन, पहले तुझे सेमनरी जाना अवश्य है ताकि तू मेरी सेवा के योग्य बन सके। प्रभु जी ने उससे केवल एक प्रश्न किया, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मित्रों, आप मुझे गलत ना समझें, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो आप स्वयं को उनकी सेवा के लिए तैयार करने के लिए किसी बाइबल प्रशिक्षण स्कूल अवश्य जाना चाहेंगे। किंतु मित्रों, प्रभु जी ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे प्रीति रखते हैं। बाइबल प्रशिक्षण स्कूल जाने से पूर्व आपके पास इस प्रश्न का उत्तर होना आवश्यक है। प्रेम बिना सेवकाई संभव नहीं। आज लोगों का एक विशाल जनसमूह है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता, इसलिए उनकी सेवा भी नहीं करता। शमौन पत्रस का उत्तर जानने के पश्चात प्रभु जी ने शमौन पत्रस से कहा कि तू सुसमाचार के कारण शहीद होगा, परंतु यूहन्ना इस सुसमाचार के लिखने के लिए तथा अन्य तीन पत्रियां तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने के लिए जीवित रहेगा। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। आज के संदेश के द्वारा आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके लिखे जाने के उद्देश्य को समझा है। इसी संक्षिप्त परिचय के साथ हम अगले कार्यक्रम में आपसे भेंट करेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार को प्रारंभ करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
खुद ही वो आए भर के करने लगे दुआए फिर प्यार
का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।